आज है 31 जुलाई दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार हुआ। आखिर एक सफल बिजनेसमैन का ये अंत कैसे हुआ?
ज्यादातर उद्योगपतियों को, कंपनियों को, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, उनको काफी कर्जा लेना पड़ा है अपना बिजनेस चलाने के लिए।
उन्नाव से बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया सीबीआई ने, पर यूपी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं,
किसी भी विधायक के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उस पर किसी प्रकार के कोई आरोप लगे हैं या कोई चार्जशीट लगी है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे।
दुनिया जहान में चर्चा इसराइल चुनावों की।
सिचुएशन ऐसी आ गई है कि बीबी नेतन्याहू का कोई अल्टरनेटिव उभरना चाहिए, लेकिन अभी कोई दिखता नहीं।
सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार आज चिकमंगलूर में कर दिया गया। उनका शव कर्नाटक में नेत्रावी नदी के तट के बरामद हुआ था। वो 29 जुलाई को गायब हुए थे। सिद्धार्थ ने एक पत्र में लिखा था कि वो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। उन्नाव रेप पीड़िता के कार हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई ने इस मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर समेत 10 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। पीड़िता के परिवार ने कुछ दिन पहले ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को चिट्ठी लिखकर जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। अब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से इस बारे में जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस पीड़िता के पत्र मामले में गुरुवार को सुनवाई करेंगे। इसराइल की सरकार ने वेस्ट बैंक में फलिस्तीनियों के लिए 700 घर बनाने को मंजूरी दी है। इस फैसले को दुर्लभ माना जा रहा है और ये फैसला ट्रंप प्रशासन के मध्य पूर्व के राजदूत के इसराइल दौरे से पहले लिया गया है। इसराइली मीडिया का एक हिस्सा इसे अमरीकी प्रशासन के शांति स्थापित करने के प्रयासों को सफल बनाने की कोशिशों के तौर पर देख रहा है। हालांकि फलिस्तीनियों ने इस घोषणा की निंदा की है और कहा है कि ये जमीन पर कब्जा करने की इसराइल की एक और कोशिश है। पश्चिमी अफगानिस्तान में एक बम धमाके की चपेट में आई बस में सवार 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बस में कई महिलाएं, बच्चे और यूनिवर्सिटी के छात्र बैठे थे। पुलिस के मुताबिक सड़क किनारे ये बम तालिबान ने प्लांट किया था, जो अफगानी लोगों और विदेशी सुरक्षा बलों को निशाना बनाना चाहते थे। हालांकि तालिबान की ओर से इस पर अब तक कोई बयान नहीं आया है। पीड़ितों को जिस अस्पताल ले जाया गया वहां के एक डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मदी ने और जानकारी दी। हमारी जानकारी के मुताबिक इस घटना में 34 नागरिकों की मौत हो गई है, साथ ही अन्य 17 घायल हुए हैं। ये थे डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मदी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हांगकांग की एक अदालत ने 40 से ज्यादा लोगों पर दंगा करने और सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने को लेकर आरोप तय किए हैं। इन लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सरकार ने पहली बार किसी प्रदर्शनकारी को दंगे का अभियुक्त बनाया है, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट में पेश होने वालों में एक 16 वर्षीय किशोर, एक शिक्षक और एक पायलट शामिल हैं। तेज हवाओं और भारी बारिश के बावजूद कोर्ट के बाहर सैकड़ों समर्थक जुटे हुए थे।
Stop using the prosecution as a means to crab against the young people. Young people will not be frightened.
युवा लोगों के खिलाफ अभियोजन का इस्तेमाल करना बंद करें। युवा ऐसी चीजों से डरते नहीं हैं। ऐसे बेवजह के मुकदमों और पुलिस बल से हांगकांग की स्थिति और तनावपूर्ण हो जाएगी। ये थे अभियुक्तों के एक समर्थक क्वॉक के शब्द। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन उत्तरी आयरलैंड के दौरे पर हैं, जहां उन्हें बिना समझौते के ब्रेक्जिट के गंभीर खतरों को लेकर चेतावनी दी गई है। प्रांत की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी शिन फेन के नेता मैरी लू मैकडोनल्ड ने कहा कि इसका मतलब होगा आयरलैंड में फिर से मजबूत सीमा बनाना, जो ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच हुए शांति समझौते का उल्लंघन करेगी, जबकि दोनों ही कह चुके हैं कि वो इस समझौते को बचाना चाहते हैं। सूडान में अफ्रीकी संघ के मध्यस्थ ने प्रदर्शन कर रहे बच्चों पर गोलीबारी करने वाले सुरक्षा बलों पर जल्द कार्रवाई करने की पैरवी की है। इस गोलीबारी में 5 बच्चों की मौत हो गई थी। बच्चों की मौत के बाद सूडान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए। भारतीय वायुसेना ने युवाओं के लिए एक नया मोबाइल गेम ऐप लॉन्च किया है, ताकि वो युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सके। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। देश की मशहूर कॉफी चेन कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार अब से कुछ घंटे पहले कर्नाटक के चिकमंगलूर में कर दिया गया। आज सुबह कुछ मछुआरों ने नेत्रावती नदी में उनके शव को देखा। वो पिछले 36 घंटे से गायब थे और जाने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिख छोड़ी थी जिसमें उन्होंने कर्ज में डूबे होने की बात कही थी। उनकी मौत से देश में उद्यमों की हालत पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
गायब होने के करीब 36 घंटों के बाद कैफे कॉफी डे या सीसीडी के मालिक वीजी सिद्धार्था का शव आज सुबह नेत्रवती नदी में मछुआरों की मदद से बरामद कर लिया गया। शव उस पुल से ज्यादा दूर नहीं था जहां सिद्धार्था अपनी कार से उतरे थे और उन्होंने अपने ड्राइवर से कार को कुछ आगे रोकने के लिए कहा था। मंगलुरु के पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल ने इस बारे में और जानकारी दी।
ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಹತ್ರ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು
ಆಜ್ ಸುಬಹ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಏಕ್ ಶವ್ ಮಿಲಾ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಪರಿವಾರ್ ಕೋ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ವೋ ಪುಷ್ಟಿ ದೇ ಕಿ ವೋ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾ ಶವ್ ಹೈ। ಶವ್ ಕೋ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ಭೇಜಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ತಾಕಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋ ಪೂರಾ ಕರೇ। ಯೇ ಥೆ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟಿಲ್ ಕೆ ಶಬ್ದ। ಶವ್ ಕೋ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಯಾನೆ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಲೇ ಜಾಯಾ ಗಯಾ ಜಹಾಂ ಉಸ್ಕಾ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಿಯಾ ಗಯಾ। सिद्धार्था के मौत से कारोबारी हलकों में कई सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर इनकम टैक्स विभाग के कामकाज की कड़ी आलोचना हो रही है। सिद्धार्था ने आत्महत्या करने से पहले जो चिट्ठी लिखी उससे ये स्पष्ट हो गया है कि वो आर्थिक रूप से बहुत परेशान थे। उन्होंने कंपनी और अपने नाम से बहुत खर्च ले रखा था, लेकिन उनको सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब आयकर विभाग ने उन्हें किसी भी तरह की सहूलत नहीं दी, हालांकि उन्होंने लिखित तौर से अपनी गलती मान ली थी। वो करीब 500 करोड़ रुपयों के बेहिसाब पैसे के बारे में आयकर विभाग को नहीं बताया था। इस विषय पर इंफोसिस के पूर्व वित्त अधिकारी वी बालकृष्णन कहते हैं कि इस मुल्क में इनकम टैक्स का आतंक छाया हुआ है। हाँ, उन पर निजी इक्विटी पार्टनर और उधारदाताओं का दबाव तो था ही, और उसके साथ साथ आयकर विभाग का बर्ताव भी अहम विषय है। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप किसी भी उद्यमी से बात कीजिए, वो कहेगा कि देश में आयकर का आतंक चल रहा है। ये थे इंफोसिस के पूर्व वित्त अधिकारी वी बालकृष्णन के शब्द। कैफे कॉफी डे को हिंदुस्तान में बिजनेस की सफलता के उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन उसके मालिक वीजी सिद्धार्थ की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये तस्वीर वाकई इतनी खुशनुमा थी। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
किसी भी शहर में कैफे कॉफी डे में आप जाएं तो वहां बैठे नौजवान लड़के लड़कियां मॉडर्न इंडिया की झलक देते हैं, सफल और खुश। वहां बैठकर ऐसा नहीं लगता कि जिस आदमी ने करोड़ों रुपया लगाकर इतना सफल बिजनेस शुरू किया वो खुद गले गले तक कर्ज में डूबा था। इससे भारतीय उद्योग जगत के बारे में क्या जाहिर होता है, ये सवाल मैंने किया बंबई में बीबीसी संवाददाता समीर हाशमी से।
ये काफी कॉम्प्लेक्स सवाल है राजेश जी, अगर मैं आपसे फ्रेंकली कहूं, क्योंकि अगर आप भारत के उद्योगपतियों की बात करें तो हमेशा ये कहा जाता है कि भारत के उद्योगपति में जो स्पिरिट है वो एक बहुत ही ताकतवर है, और उसी के बलबूते पे आज भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ा कर पाया है। ये बड़े मल्टी कॉरपोरेशन की वजह से नहीं, बल्कि जो मध्यम वर्ग के या जो लोग जिन्होंने बिजनेसेस अपने बलबूते पर बनाए हैं। लेकिन हाँ, ऐसी खबरें आती हैं, और अगर हम वीजी सिद्धार्थ की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा नाम है उद्योग जगत से जिसने ऐसा कदम उठाया है। आज भी अखबार उठा के देखें तो खबरें आती रहती हैं कि मध्यम वर्ग के या छोटे व्यापारी काफी उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं पिछले कुछ सालों में, खासतौर पर जो भारत की अर्थव्यवस्था है।
हाँ, लेकिन ये मैं समीर माफ कीजिएगा रोक रहा हूँ कि ये हमारे जैसे लोगों के लिए क्या होता है? सफलता का सपना ये होता है कि आपने पैसे लगाए, आपका बिजनेस जो है फला फूला, आपने और करोड़ों कमाए, लेकिन उसके बाद एक दिन पता चला कि आप करोड़ों रुपए के कर्ज में डूबे हुए हैं, इसे कैसे समझेंगे?
जी, ये आपने सही मुद्दा उठाया है कर्ज का। एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के उद्योगपतियों के लिए है पिछले कुछ सालों में है वो कर्ज का। भारत की अर्थव्यवस्था काफी नाजुक दौर से गुजर रही है, उसकी वजह से ज्यादातर उद्योगपतियों को, कंपनियों को, चाहे बड़े हों चाहे छोटे वर्ग के हों, उनको काफी कर्जा लेना पड़ा है अपना बिजनेस चलाने के लिए। क्योंकि एक तरफ आपको व्यापार को बढ़ाना है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर अगर आप देखें तो काफी मुश्किलें हैं, और उसकी वजह से कर्ज वो लोग लेते गए लेकिन चुका नहीं पाए। और यही इस केस में भी हुआ कि वीजी सिद्धार्थ के केस में जो अभी तक डिटेल्स आई है उसमें लगता यह है कि इन्होंने कर्ज इतना ज्यादा ले लिया था लेकिन उसको चुका नहीं पा रहे थे। इन्होंने एक कंपनी में अपना स्टेक भी बेचा इस साल जिसमें उनको काफी पैसे मिले लेकिन उसकी वजह से भी नहीं आ पाया। लेकिन वाकई में ये दर्शाता है कि दो बड़े मुद्दे हैं, एक तो अर्थव्यवस्था जो उद्योगपति है उन लोग के सामने काफी कठिनाइयां हैं इस वक्त, क्योंकि भारत में इस वक्त अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो काफी नाजुक दौर से गुजर रहा है। और दूसरा एक डिप्रेशन के ऊपर भी एक इसका बहुत बड़ा तवज्जो डालता है ये जो इशू है कि जैसे आप कह रहे थे कि अगर आप करोड़पति भी हों और इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हों और उसके बावजूद अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं तो ये दर्शाता है कि डिप्रेशन जो है एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है इस मुल्क में। बल्कि मैं एक साइकेट्रिस्ट से भी बात कर रहा था, वो मुझसे कह रही थी कि उनके पास जो पेशेंट्स आते हैं तो उसमें यंग टीनेजर्स बहुत आते हैं और उसके बाद जो नंबर टू पे आते हैं वो हैं काफी यंग लोग जो जिन्होंने स्टार्टअप्स स्टार्ट किए हैं या नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं या व्यापार चला रहे हैं, इस तरह के लोग आते हैं।
ये थे बीबीसी संवाददाता समीर हाशमी। बीबीसी हिंदी सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर सहित 10 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के षड्यंत्र का मामला दर्ज किया है। ये एफआईआर रायबरेली के पास हुई कार और ट्रक की टक्कर के सिलसिले में की गई है जिसमें वो लड़की सफर कर रही थी जिसने विधायक सेंगर के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाए थे। इस टक्कर में लड़की के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई और लड़की और उनके वकील गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस टक्कर से पहले लड़की और उनके परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि विधायक सेंगर की ओर से उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। आज मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि वो अर्जी मुख्य न्यायाधीश तक क्यों नहीं पहुंचाई गई। मैंने कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकार सुचित्रा मोहंती से इस बारे में बात की।
सुप्रीम कोर्ट में जब आप सुनवाई हुई कोविजिलेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने जब संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई किया तो सुनवाई के बाद काफी नाराज थे क्योंकि जो चिट्ठी है उन्नाव की जो विक्टिम है उनके फैमिली ने जो चिट्ठी लिखा है उनको क्यों नहीं पेश किया। उन्होंने साफ तौर पर ये आज भरी अदालत में ये कहा कि जो चिट्ठी है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जो स्टाफ है उन्होंने क्यों नहीं पेश किया, जबकि 17 तारीख को उनके पास चिट्ठी आ चुके थे। उन्होंने 12 तारीख को डिस्पैच किया था, 17 को मिल गया था सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को, लेकिन ये क्यों नहीं उनके पास पहुंचा दिया गया था। लेकिन हम अपने लिसनर्स को ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में एक नहीं, दस नहीं, सौ नहीं, हजारों चिट्ठी आती है लेकिन उनके पास ये नहीं लिखा होता कि कौन सा केस उन्नाव से है, कौन सा बुलंदशहर से, कौन सा मुजफ्फरपुर से, तो ये शायद उनके लिए दिक्कत हो सकती है।
अब मुझे ये बताइए कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई फिर से होगी आपके अंदाज से सुप्रीम कोर्ट क्या रुख ले सकता है?
देखिए ये तो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या कह सकते हैं, लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस यही बताती है कि जहां तक पनिशमेंट की बात है, जहां तक कार्रवाई की बात है, कार्रवाई की बात बिल्कुल नहीं हो सकती है क्योंकि बहुत सारी चिट्ठी आती है और इनमें से कोई तय करना बहुत मुश्किल होती है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि चारों तरफ जब इतना डिस्ट्रक्शन है उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव हम करेंगे, यानी इतना विध्वंस जो हो रहा है इसमें कुछ निर्माणात्मक काम भी हम करेंगे, कुछ पॉजिटिव करेंगे, इसका क्या अर्थ निकाला जाए?
देखिए इसका साफ अर्थ हम अगर निकालेंगे तो यही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब का यही कहना था कि उत्तर प्रदेश में जब ये सब हादसे हो रहे हैं, कोई अलजेड रेप कर रहा है, कोई वहाँ पे प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीगल काम हो रहे हैं, ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो इसी को रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्होंने कहा कि ये इस पे हम कार्रवाई करेंगे, यानी कि सुनवाई करेंगे और सुनवाई के वक्त इसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से यानी रचनात्मक तरीके से इसको सुनवाई के बाद हम कोई स्टेप लेंगे।
ये थे सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले संवाददाता सुचित्रा मोहंती। बलात्कार के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर पिछले लगभग एक साल से जेल में बंद हैं, पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बीबीसी हिंदी से कहा कि किसी भी विधायक के लिए जरूरी नहीं कि वो आरोप लगने पर पद से इस्तीफा दे ही दे। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने उनसे पूछा, पीड़िता का हाल पूछने के लिए क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को जाना नहीं चाहिए था?
पार्टी के उप मुख्यमंत्री मिलने गए हैं इस घटना के बाद जब एक्सीडेंट हुआ है, और उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से भी मुलाकात हुई है। और मुलाकात से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं मानता हूं कि जो अपेक्षा परिवार की रही कि इस पूरे मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर उनका भरोसा नहीं है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश किया और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन अपनी करके इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल करने का काम किया है। सीबीआई कोर्ट इसका ट्रायल करने जा रही है।
परिवार का कहना है कि उन्हें ना सिर्फ स्थानीय प्रशासन पर विश्वास नहीं है बल्कि पुलिस पर भी विश्वास नहीं है, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है?
देखिए, इस मामले को भी सरकार ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है, उन्होंने
वो तो जिम्मेदारी उधर देना हो गया।
हाँ।
पर क्यों पुलिस पर विश्वास नहीं है और क्यों वो विश्वास कायम नहीं कर पा रही एक साल बाद भी सरकार?
देखिए, पुलिसिंग सिस्टम को लेकर के बहुत सारे प्रश्न अलग अलग अन्य मामलों में भी खड़े होते रहे, और मैं इस बात के साथ हूँ कि वास्तविकता में पुलिस सुधार को लेकर के कुछ कठोर प्रयास करने चाहिए, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रयास कुछ शुरू किए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिसिया सिस्टम को पिछली सरकारों ने तहस नहस कर दिया था। जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, पैसे के आधार पर भर्तियां की गई हैं, इसके जाति क्षेत्र और पैसे के आधार पर पोस्टिंग दी गई है, पूरे सिस्टम को करप्ट करने का काम पिछली सरकारों ने किया है। हम इन व्यवस्थाओं को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर इससे पहले बसपा के विधायक रहे हैं, कुलदीप सेंगर इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, और उन पर तमाम आरोप उस समय भी लगते रहे, आज तक कभी उन्होंने जेल की सलाखें नहीं देखी थी। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक वर्ष से ज्यादा हो गया है, आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, और बावजूद इसके सारे प्रश्न आज भारतीय जनता पार्टी से हैं।
इस वक्त कुलदीप सेंगर भाजपा के विधायक हैं, और आप खुद मानते हैं कि 20 साल से करीबन सत्ता में रहने की वजह से उनका बहुत रसूख है, क्या उनसे विधायक पद से हटने की मांग पार्टी को, सरकार को नहीं करनी चाहिए?
किसी भी विधायक के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उस पर किसी प्रकार के कोई आरोप लगे हैं या कोई चार्जशीट लगी है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि नैतिक आधार पर एक समय ऐसा हुआ करता था जब भारत के रेल मंत्री इस बात के लिए इस्तीफा दे देते थे कि कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये पूरी सोसाइटी, पूरी पॉलिटिक्स और सबके लिए आज एक विचारणीय प्रश्न है कि मोरालिटी का ग्राउंड कहाँ है।
ये थे यूपी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। जिस महिला की वजह से भारतीय संसद ने तीन तलाक की प्रथा को अपराध घोषित किया है, उनका नाम है सायरा बानो। वो उत्तराखंड राज्य के काशीपुर शहर की रहने वाली हैं। उन्हें उनके पति रिजवान ने एक चिट्ठी के जरिए तीन बार तलाक लिखा और संबंध विच्छेद कर लिए। सायरा बानो ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जीती, और अब संसद ने एक विधेयक पास करके तीन तलाक को अपराध घोषित कर दिया है। हमारी सहयोगी कीर्ति दुबे ने सायरा बानो से संपर्क किया और पूछा कि उनकी लड़ाई कैसे शुरू हुई।
मेरी शादी 2002 में इलाहाबाद में हुई। शादी के तुरंत ही बाद मेरी सास जो है दहेज के लिए परेशान करने लग गई। मेरे हस्बैंड भी शामिल रहते थे, मेरी जेठ जेठानी भी शामिल रहते थे। जो मेरे हस्बैंड है, मुझे लेकर उनका व्यवहार भी ज्यादा अच्छा नहीं रहता था। वो किसी से मिलने जुलने मुझे नहीं देते थे, और आए दिन मतलब किसी ना किसी टॉपिक को लेकर लड़ाई झगड़ा करते थे। और उसके बाद उन्होंने मेरे 6 से 7 एबॉर्शन करवाए, जिसके वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, और मेरा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया, ऐसी रहने दिया। और जो उनके दोस्त हैं और जो दोस्त की बीवियां हैं और रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने मतलब ये कहा कि अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है तो तलाक दे देना चाहिए।
उन्होंने स्पीड पोस्ट आपको भेजा था, ये ट्रिपल तलाक का स्पीड पोस्ट था, इसमें उन्होंने तीन बार तलाक लिखा था।
हाँ, उन्होंने लिखा था, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ लिखा था।
इसके बाद आपकी लड़ाई शुरू हुई, उसके बारे में आप बताइए।
हम लोग जब तलाकनामा मेरे हाथ में पहुंचा तो मुझे बहुत ही हम लोग शॉक्ड हो गए और बहुत ही परेशान हो गए। मेरी फैमिली और मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गई। और फिर हमने ये सोचा कि और भी जो लेडीज होती होंगी, मुस्लिम जो महिला होती होंगी, उनके साथ भी ऐसा होता होगा, बिना किसी वजह के, बिना किसी गलती के उनके साथ भी ऐसे ही तीन तलाक दे दिया जाता होगा, घर से बाहर कर दिया जाता होगा, अपनी जिंदगी से उन्हें हटा निकाल दिया जाता होगा। और फिर मैंने लड़ने का निश्चय किया।
एक महिला के तौर पे ऐसे पति के साथ रहना चाहेंगी जो आपसे प्यार नहीं करता और आपको इस तरह टॉर्चर करता है?
नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचकर समझौता करना हो पड़ता है, तो ये सब चीज बातें जो एक औरत के आगे आ जाती है। लेकिन कानून बन जाने के बाद अब जो है तीन तलाक की जो कुप्रथा है उसमें कमी आएगी, लोगों को कानून का डर हो जाएगा, और डर की वजह से जो है तीन तलाक की जो कुप्रथा है उसमें कमी आएगी।
तीन तलाक को चुनौती देने वाली सायरा बानो। और अब दुनिया जहान। आज बात इसराइल की, जहां एक पखवाड़े के बाद संसदीय चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव इसराइल के कद्दावर नेता बेन्यामिन नेतन्याहू का राजनीतिक भविष्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही और भी कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। चुनाव में अभी से कई नए रंग नजर आने लगे हैं, जिनमें बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी शामिल हैं। दुनिया जहान में संदीप सोनी की प्रस्तुति।
दुनिया जहान। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर घनी आबादी वाला इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक आबादी यहूदियों की है। वर्ष 1948 में एक देश के तौर पर अस्तित्व में आने के बाद फलस्तीनियों और पड़ोसी अरब देशों के साथ इसराइल का जमीन के उस हिस्से के लिए संघर्ष होता रहा है जिसे यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही पवित्र मानते हैं। फलस्तीनियों के साथ संघर्ष और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं की वजह से इसराइल में हमेशा एक ऐसा राजनीतिक वातावरण रहा जिसने देश में अस्थिर गठबंधन सरकारों को जन्म दिया। दक्षिणपंथी लिक्विड पार्टी के नेता बिन्यामिन नेतन्याहू इसराइली नेताओं की कड़ी में इस समय सबसे बड़ा नाम है, जो बीते 10 वर्षों से प्रधानमंत्री की शक्ल में सत्ता पर काबिज रहे हैं।
The border will be different than the one that existed on June 4th, 1967. Israel will not return to the indefensible.
सितंबर में होने वाला चुनाव नेतन्याहू के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। यरूशलम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा बताते हैं,
नेतन्याहू के खिलाफ अभी 4 मामलों पर तहकीकात चल रहा है। पुलिस ने उन्हें इंडाइट करने के लिए रेकमेंड कर रखा है। उनकी तरफ से जो प्रस्तुति हुई है अटॉर्नी जनरल को, उसमें कहा गया है इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। और अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने 2 अक्टूबर का तारीख तय किया है जिस दिन उनकी सुनवाई होगी, और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो या ना हो। अगर वो चुनाव में जीतते हैं तो जाहिर है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उसका एक दबाव अपने आप बनेगा इस कानूनी कार्रवाई पर।
इससे पहले अप्रैल में हुए आम चुनावों में नेतन्याहू की कंजर्वेटिव लिक्विड पार्टी को संसद की 120 सीटों में से 35 सीटें मिली थीं, लेकिन कम सीटों के बावजूद बाकी दक्षिणपंथी पार्टियों के समर्थन से नेतन्याहू को सरकार बनाने का मौका मिला। यूं तो नेतन्याहू को गठबंधन बनाने में माहिर माना जाता है, लेकिन अप्रैल में हुए चुनावों के नतीजे आने के बाद नेतन्याहू और उनकी लिक्विड पार्टी गठबंधन करके भी सरकार बनाने से महज 1 सीट दूर रह गई। इसकी वजह बना एक मिलिट्री ड्राफ्ट लॉ जिसने नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन को सेक्युलर, अल्ट्रा नेशनलिस्ट और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स धड़ों में बांटकर सत्ता में आने से सिर्फ 1 कदम पहले रोक दिया।
काले पोशाकधारी जो यहूदी दिखते हैं, जो न्यूयॉर्क में भी काफी देखे जाते हैं, वो जो समुदाय है तकरीबन उसकी आबादी 10% है इसराइल में, लेकिन राजनीतिक पकड़ उनकी बहुत मजबूत है। उनका समर्थन बड़ा अहम होता है सरकार बनाने की प्रक्रिया में, लेकिन उनका एक जो सबसे बड़ा जो डिमांड हमेशा होता है उनकी ओर से ये मांग की जाती है कि जो लोग यशिवा यानी कि जो रिलीजियस सेमिनारी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें छूट दी जाए कि उन्हें आर्मी में सर्व नहीं करना पड़ेगा। काफी समय से ये छूट उन्हें मिली हुई है। इस मुद्दे पर लिबरबान जो कि राइट विंग के ही पार्टी के नेता हैं, उन्होंने मांग की कि इसको हटाना होगा। दरअसल नेतन्याहू और लिबरबान दोनों के पहले काफी अच्छे संबंध रह चुके हैं, लेकिन बीच में थोड़ी अनबन हो गई और माना यह जा रहा है कि ये मुद्दा अहम नहीं था, उन्हें बस तलाश थी कि वो नेतन्याहू को किसी तरह से गिरा सके। तो महज 1 सीट की कमी नेतन्याहू, उनकी जीत जो है वो अधूरी रह गई।
इस अधूरी जीत को नेतन्याहू अब की बार हर कीमत पर पूरा करना चाहेंगे। नेतन्याहू इस चुनाव में मध्य पूर्व के मौजूदा हालात को देखते हुए देश की सुरक्षा के लिए खुद को एक मजबूत और दमदार नेतृत्व के तौर पर पेश कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष नेतन्याहू को उनकी कथित विभाजनकारी आंतरिक नीतियों के आधार पर और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की बुनियाद पर घेरने की कोशिश कर रहा है। इसराइल में भारत के राजदूत रहे नवतेज सरना बताते हैं,
निर्णायक चुनाव होगा क्योंकि अब वो इसराइल के सबसे लंबे अरसे रहने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। डेविड बेन गुरियन का जो रिकॉर्ड था उसको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, और जो पिछली इलेक्शन हुई थी उसमें नेतन्याहू साहब को ऐसा करना पड़ा कि फिर से इलेक्शन हो। ये कभी पहले हुआ नहीं इसराइल की पॉलिटिक्स में। तो अब एक ऐसा समय आ गया है कि इसराइली पब्लिक को डिसाइड करना पड़ेगा कि इनको आगे प्रधानमंत्री चुनना है कि नहीं। तो अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि बीबी नेतन्याहू का कोई अल्टरनेटिव उभरना चाहिए, लेकिन अभी कोई दिखता नहीं।
इसराइल के चुनाव में इस बार एक नया रंग नजर आया है। दुनिया भर के बड़े नेताओं के साथ अपने अच्छे संबंधों को बिन्यामिन नेतन्याहू ने चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है और इसके लिए बड़े बड़े चुनावी बैनर्स में उन्हें अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाया गया है।
जो उसमें कैप्शन चल रहा है उसके साथ वो ये है कि इन अनदर लीग, तो जैसे नेतन्याहू एक ऐसे वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं एक ऐसे स्तर का लीडर हूं जिसका ग्लोबल रीच है, जैसे देखिए प्रधानमंत्री मोदी का है, और ऐसा आदमी हूं जो अपने देश के लिए एक विजन रखता है, जो वो अपने आप को एक ग्लोबल लीडर की तरह प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए ये जो हमारे प्रधानमंत्री के साथ उनकी काफी अच्छी केमिस्ट्री बनी थी जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे, आपको याद होगा कि उनकी बड़ी अच्छी फोटोग्राफ्स आई थी दोनों की, और नेतन्याहू भारत भी आए थे उसके बाद, तो इसका वो चुनाव में अपनी अपनी इमेज बनाने के लिए एज ए ग्लोबल लीडर उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं।
वर्ष 1996 में नेतन्याहू ने जब पहली बार चुनाव जीता, आलोचकों ने ये कहते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया था कि नेतन्याहू के पास अनुभव नहीं है, लेकिन जब इसी साल अप्रैल में हुए चुनाव में नेतन्याहू ने जीत का डंका बजाया तो उन्हें जादूगर कहकर सराहा गया। तेल अवीव में जन्मे, अमेरिका में पले बढ़े नेतन्याहू 18 साल की उम्र में इसराइल लौटने के बाद सेना की कमांडो यूनिट में कैप्टन के तौर पर शानदार 5 साल बिताकर आगे की पढ़ाई के लिए वापस अमेरिका गए और अमेरिकी टेलीविजन पर धारा प्रवाह अंग्रेजी में इसराइल की पैरवी करने वाले जाने पहचाने चेहरे बन गए। अमेरिका से दोबारा इसराइल वापसी करके घरेलू राजनीति से शुरुआत करते हुए लिकुड पार्टी के रास्ते संसद का सफर तय करते हुए नेतन्याहू ने सबसे पहले उप विदेश मंत्री का ओहदा हासिल किया, फिर पार्टी के अध्यक्ष बने। लेकिन निर्णायक मोड़ आया तब जब प्रधानमंत्री इत्ज़ाक रॉबिन की हत्या के बाद वर्ष 1996 में उन्हें इसराइल में सीधे चुनाव के जरिए चुना गया पहला प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उसके बाद सिर्फ एक बार 1999 के चुनाव में उन्हें अपने ही एक पूर्व कमांडर एहुद बराक से हार कर सत्ता से बाहर होना पड़ा, लेकिन इसके बाद साल 2009 में प्रधानमंत्री के तौर पर वापसी करके नेतन्याहू इसराइल की सत्ता पर एक तरह से छा गए। यही उनकी विरासत है जो इस चुनाव में दांव पर लगी है। संदीप सोनी, बीबीसी, दिल्ली।
और एक खूबसूरत सी लक दक साड़ी में लिपटी हुई सूर्यांशी पांडे स्टूडियो में आ गई है खेल समाचार सुनाने के लिए। बहुत कम समय है, तुरंत सुनाइए।
बिल्कुल, तुरंत सुनाते हैं और तारीफ के लिए शुक्रिया। और आज थाईलैंड ओपन का मुकाबला चल रहा है बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर साइना नेहवाल ने अपनी बढ़त बना ली है। पहले मुकाबले में छाइवन को 21-17, 21-19 से हरा दिया है और वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष वर्ग में चाइनीज खिलाड़ी रेन पेंगबो को 21-13, 17-21 और 21-19 से हरा दिया है और वहीं प्रणय और पारुपल्ली कश्यप भी आगे बढ़ चुके हैं। और अगर हम बात करें क्रिकेट की तो वहां पर ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एशेज सीरीज होने वाली है उसके लिए इंग्लैंड की टीम ने अपनी घोषणा की है। पूरे 14 प्लेयर्स की स्क्वाड बनाई है जिसके अंदर जोफ्रा आर्चर, सैम क्यूरन और ओली स्टोन को मौका नहीं दिया गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यांशी पांडे खेल समाचारों के लिए। और अब वक्त है मुख्य समाचारों का।
बीबीसी समाचार। सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे के संस्थापक बीजी सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार आज चिकमंगलूर में कर दिया गया। उनका शव कर्नाटक में नेत्रावती नदी के तट से बरामद हुआ था। उन्नाव रेप पीड़िता के कार हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई ने इस मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर समेत 10 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। चीफ जस्टिस पीड़िता के पत्र मामले में गुरुवार को सुनवाई करेंगे। इसराइल की सरकार ने वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के लिए 700 घर बनाने को मंजूरी दी है। इस फैसले को दुर्लभ माना जा रहा है और ये फैसला ट्रंप प्रशासन के मध्य पूर्व के राजदूत के इसराइल दौरे से पहले लिया गया है। पश्चिमी अफगानिस्तान में एक बम धमाके की चपेट में आई बस में सवार 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। बस में कई महिलाएँ, बच्चे और यूनिवर्सिटी के छात्र थे। बीबीसी समाचार।
गुरप्रीत सैनी सुना रही थी मुख्य समाचार। आज स्टूडियो मैनेजर थे शाकिर आलम, मैं राजेश जोशी। आप सभी से अनुमति चाहता हूं, कल सुबह हमेशा की तरह 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभरात्रि।